आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
इस क्रम में हमारी अगली कवियत्री हैं जोशना बैनर्जी राजवाणी। जोशना आगरा के स्प्रिंगडेल मॉडर्न पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत है और पढ़ाने के अलावा ये सीबीएसई के वर्कशॉप्स लेती हैं और उसमें सक्रिय भूमिका होती है। इंग्लिश साहित्य में एमए किया है, बीएड और पीएचडी की और इनके दो कविता संग्रह हैं। पहला कविता संग्रह है सुधान कोना जो इनके स्वर्गीय माता पिता को समर्पित है और दूसरा कविता संग्रह है अमरुधि में पसरा है आकाश जो वाणी प्रकाशन से आया है। और अभी ये शंभू महाराज जी के काम पर तो विस्तृत काम करने के लिए रजा फाउंडेशन से एक फेलोशिप मिली गई है जिस पर काम कर रही है। इनके कविता का एक हिस्सा है मेरे भीतर एक लड़की है जो पन्नों से बनी है, तुम्हारे बाहर एक दुनिया है जो ईश्वर ने रची। ऐसी कविता लिखने वाले कृष्णा बनर्जी का नाम आमंत्रित करता हूँ। वो है ना मैंने कविता हमें सुना।
शुभ संध्या सभी को। मेरी पहली कविता का शीर्षक है भात। भात पकाकर माँ ने तांबे के बर्तन में केले के पेड़ के नीचे रख छोड़ा। पिता की आयु स्वर्ग से खींच लिया। भात उबले आलू और मधु से भिक्षुणी को विदा किया। भात पकाया जब जब पिता ने बेचे हुए खेतों के किस्से बार बार सुनाए। भात पर उसकी माँ को पिता पौलमी यमी शचि कामायी सुतंभरा न जाने क्या क्या कहते रहे। चार दाने जो छूट जाते थाली में भात के दादी चिल्लाती भात का सम्मान इंद्र से भी बड़ा है, एक दाना न बचे थाली। चावल की बोरियां ग्राम से आ जाती थी वर्ष में एक आध बार परंतु उससे काम न चलता। दो बेला भात की जुगत में पिता के देह का रंग भात से उतर कर कोयला होता रहा। भात से उगते धुएं में ही पढ़ाई की, भात के पानी से ही त्वचा चम गई, भात के मान से ही सूती कुर्ते और साड़ियां कड़क हुए, शरीर में विटामिन ई और भी बढ़ा। भात की पूजा में दुर्गा को चढ़ाया, बचा भात भिक्षुकों को खिलाया। सप्ताह में तीन दिन पांडा भात बनता खाते खाते सात योजनाएं बन जाती हैं जिसमें से छह विफल रहती हैं। बासी भात खा खाकर ही पुटेलू चटर्जी ने अपना अल्सर ठीक किया। कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, हमारे पड़ोसी थे। पत्नी मर चुकी थी, कई दिनों तक मून भात खाया, माटी में ही पड़े रहे। कोई 20 दिन तक हम सब्जी मछली देते रहे, भात की चिंता नहीं पुनः उठ खड़े। इतने भात में ही है हम बांग्ला भाषी, अपने अलावा कुत्तों बिल्लियों पक्षियों चीटियों मछलियों तोतों को भी भात ही खिलाते आ रहे हैं। भात न पके जब वह दिन हमें डरा देता है। क्या ही मानता है भात हमसे नम जलवायु और थोड़ा सूर्य। देश में भात खाने वालों को मिलता है और भात, ऐसा कहते थे पंडित जी तेरा भाग। भात ही त्रिदेव का कारक है, समय का भात का ही जन्म। भात खाते खाते ही जानू अपनों के मन की बात, किसने किससे प्रेम किया, किसने किससे छला, किसने क्या लिखा, कौन कितना धनेश बना, किसने सबसे सुंदर वस्त्र पहने शादी में, उखर के समीप प्रेम पत्र किसने किसे दिया। इस सब की खबर भात खाते खाते ही मिली। अन्न धन कहने में सबसे बड़ा चरित्र भात किया। भात मात्र भात न हुआ प्राण हुआ हमारा। कोई आता तो चावल ही लेकर आता, कोई जाता तो भात ही खाकर जाता। मछली का काटा फंसा दांत में बार बार, भात कभी न फंसा। भात न फंसता न फांसता, भात तो शीतलता ही देता रहा। भात से ही बने मेरे दांत, मेरी हड्डी, मेरी देह, भात ने ही मुझे जिलाए रखा। भात बचने पर ही बना रस, रस से रक्त बना, रक्त से ही सब बना। माँ का गर्भ पिता का वीर्य सब भात से ही बना, भात से ही बनी हूँ। रोटी की तरह भात भी एक महापृथ्वी, भात कभी ना खत्म होने वाला समय है। दूसरी कविता का शीर्षक है अठोतरी। आज सहेलियों में चर्चा का विषय था कि अश्रु बहकर कहाँ चले जाते हैं। पहली सबसे बड़ी उम्र की लड़की ने कहा नीलोत्पला में जाकर मिल जाती है। सहसा किसी ने पूछा अनुकांक्षाएं जो पूरी नहीं होती वे कहाँ शरण पाती हैं। दूसरी लड़की जिसके पिता धनतरी में पत्थर काटते थे कह उठी सिहावा में जम जाते हैं। तब पूछा गया कि पीड़ा में भी मुड़ जाने की लचीली कला देने के किस अंग में है। गौना हुआ था जिस तीसरी लड़की का उसने कुछ इशारा किया। हम सब उसकी ओर ताकते रह गए। चौथी लड़की जो काशी का सिर पर रखकर चली आई थी बोली, जब बना चुकी होगी सब्जी रोटी खा लेंगे सभी, पर मेरी देह की गंध से स्नेह नहीं करेगा। पांचवी लड़की की कामना थी कि वह ऐरावत की सवारी करे। यह सुनकर हंस पड़े सब। छठी लड़की अंधी थी, माँ बाबा मर चुके थे। कहने लगी, पता नहीं कौन उसकी छाती मसल देता है, जब तक गंध से पहचानती है तो दादी डांट कर समझा देती है, चाचा के विषय में ऐसा नहीं कहते, पाप लगता है दंड मिलेगा। उसकी आंखों में झोंक दी गई थी सीता और दमयंती। सातवीं लड़की को खूब पढ़ाई करनी थी, देश दुनिया घूमना था, अजायब घरों पर किताब लिखना चाहती थी। एक घर खरीदेगी परिवार के लिए, अच्छी नौकरी लगने पर पिता ने कन्या छात्रवृत्ति योजना में फॉर्म भरा है। आठवीं लड़की सोच रही है उसे क्या कहना चाहिए, किस विषय पर बात करे। लगायब उठकर सबको गले से लगा लेती, आठों सहेलियां खिलखिलाकर हंस देती हैं। आठ लड़कियों के आठ दो, 800 लड़कियों के होंगे 800, और इस तरह जितनी लड़कियां उतनी दुख, किस अटोटरी में इतनी व्यतीता जो जब भर लेने से मिट जाए इनकी पीड़ाएं। आठ लड़कियों के आठ दुख, 800 लड़कियों के होंगे 800, और इस तरह जितनी लड़कियां उतने दुख, किस अटोटरी में इतनी व्यतीता जो जब भर लेने से मिट जाए इनकी पीड़ाएं। आठ लड़कियों के लिए 808 मंत्रों की एक अटोटरी निरर्थक, निरर्थक है अटोटरी। माँ के लिए कविता लिखी थी। अच्छा हुआ उसे सत्यजीत रे ने नहीं देखा। पृथ्वी का हरा चुनता था उसकी गति को, वह उस हरे से लाल पीले सफेद पुष्प उगा लेती थी। उसके गीले केश की गंध रविंद्र संगीत जैसी लगती थी। हल्दी के गांठों के रंग उसकी हथेलियों पर जम गए थे। उसकी धवलमा से घर में एक उजास थी। मैं केश बांधते हुए भी कर लेती थी कोयले से फूकने में प्रतियोगी थी। वह आठ भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, सबसे छोटी रह गई उसकी अनुकांक्षा। उसकी रसोई में पंचतोरण की महक से भूख इतनी होती थी। जब शिष्य थक लेता था हमारी छत दोनों घुटनों में ऊन फसाए वह गोले बनाती थी, आंगन में लेट जाती थी भगला उपन्यास। लहरियां उसे देखती थी देख कर, आंख लगने पर घर की बिल्लियां शोर नहीं करती थी। उसे बर्फ पर जाना बेहद पसंद था, वह कभी जा नहीं पाई। बर्फ ने उसे कभी नहीं बुलाया। मैं आज तक बर्फ पर कोई कविता नहीं लिख पाई। उसे चिट्ठियों से नव जीवन मिलता था। अपने पिता की चिट्ठी पाने पर खूब रोती थी। अनोखी अनोखी थी वो। चिट्ठियां रखने का एक कोना था उसका। मैं आज भी उस कोने में बैठकर उसका रूप देखती हूँ। उसका सावला रंग संध्या बाती में बांग्ला फिल्मों की नायिका की तरह दमकता था। अच्छा हुआ उसे सत्यजीत रे ने नहीं देखा, वरना तो वो अपना पूरा जीवन मुझ पर कैसे बांटती। उसकी सुंदर ऊंची नाक पर हीरा श्रद्धानत होकर बैठा रहा जब तक वो रही। मुझे महसूस है मेरी नाक उसकी तरह क्यों नहीं। उसकी सभी साड़ियां और गहने मेरे पास है, मैं जतन से रखती हूँ। उसकी चादरों की बेले उसकी कहानियों को पकड़कर आकाश चढ़ जाते हैं। सॉरी हो रहा हूँ दोस्तों। आज काजल ही मेरा सबसे पसंदीदा आभूषण है। उसके दलतकिए में से केले की गंध आती थी, वह दलतकिया आज भी मेरे पास। मैं मच्छर पानी लगाते हुए बांग्ला गीत गाती थी, उसके कंठ के तार कसे हुए थे, वह माँ थी मेरी। शाम को जब बिजली विभाग से पिता आते थे, माँ छावनी बन जाती थी, घायल पिता सुस्ताते थे। अंतिम कविता पढ़ती हूँ। बच्चे रुष्ट हैं हमसे। अलशुहादा स्कूल में पिछले दिनों धमाके में मारी गई बच्चियों की मेज पर फूल रख रहा है एक कर्मी। नहीं हो सकी अफगानिस्तान और तालिबान के बीच शांति वार्ता, नतीजन मर गई बच्चियां। उधर इसराइल और इस्लामिक आतंकी संगठन हमास के बीच सातवें दिन भी संघर्ष जारी रहा, हमले में 13 बच्चे मर गए। एक अन्य देश में स्कूल बस उड़ा दिया गया, 47 बच्चे वहां मरे। बच्चे मेरे देश के हों या अन्य किसी देश के, सच्चे कोमल सुंदर बच्चे ईश के। बच्चे ज्वालामुखियों अथवा बादल फटने से नहीं बम से मर रहे हैं, बच्चे युद्ध में मर रहे हैं, बच्चे महामारी से मर रहे हैं। अभी अभी दुनिया में आए बच्चे गेंद लपकना भी नहीं सीख पाए हैं, चांद को देखकर पूछते हैं माँ से कि वो क्या है। बच्चे अभी दुनिया को अचरज की नजरों से भी देख रहे हैं, बच्चे रुष्ट हैं हमसे, वो संसार से चले जा रहे हैं। बम महामारी तो युद्ध बच्चे अभी समझते ही नहीं इन सबका कारण, वे अभी अभी खेलना सीखते हैं, सीधी चप्पल भी नहीं पहनना जानते, दांत अच्छे से आए नहीं है, कुतला रहे हैं, फिर भी वे चले जा रहे हैं, बड़ों की हरकतों से लड़ नहीं पा रहे हैं, वे रुष्ट हैं हमसे। उनकी अंतही मीठी बोली किसी फल को नहीं मिल सकेगी, कौन पूछेगा बुद्धिजीवियों से युद्ध है आवश्यक या बच्चे। वे सभी शब्द, सभी चित्र, सभी आविष्कार, कलाएं, नृत्य, उत्सव, लेख, कविताएं, उपन्यास, सभी प्रतियां जो हमें उन बच्चों से मिलने वाली थी, वे बच्चों के साथ साथ अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। वे सभी फूल जो वे बच्चे तोड़ते, वे सभी पेड़ जो बच्चे लगाते, वे सभी कारखाने, मंच, प्रकाशन घर, पुस्तकालय, विद्यालय, बागीचे जो वे बच्चे बनाते, वे सभी बनने से पहले ही नष्ट हुए। वे हर एक चीज जो छूते बच्चे, वे खंडित रह जाएंगे, नहीं मिलेगा उन्हें कोई मोक्ष, नहीं मिलेगा कोई अन्य जन्म, बच्चे रुष्ट हैं हमसे, बच्चे दुनिया से चले जा रहे हैं। कितना उठा है वस्त्र बाजार संसार में, बच्चों के समक्ष हम नग्न खड़े हैं एक आरोपी की भांति, परंतु हमें कोई फांसी नहीं दी जाएगी, हम पुनः बच्चे बनाने की प्रक्रिया में भूल जाएंगे मरे हुए बच्चों को। बच्चे जिस मिट्टी में दबाए जाएंगे, सिराए जाएंगे जिस नदी में, जिस मिट्टी की धूल और उस नदी का पानी, एक दिन बदला लेने उठेंगे हमसे, लेकिन हमें साल लेगी नदी, डुबो देगी अवश्य। तब ये डर नहीं होगा कि कोई डाकू आएगा और उठा ले जाएगा तुम्हारा अनाज, या कोई अन्य देश का राजा तुम्हें गुलाम बनाएगा। ऐसा भी ना होगा कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था गिरेगी खराब। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, सोचो कोई बड़ी बात नहीं कि कोई नया वायरस आकर तुम्हें नकुंचक बना दे। कुछ नहीं कहा जा सकता भविष्य के खतरों के विषय में, धर्म, ईमान, सच्चाई, देश, इज्जत कुछ भी नहीं बचा सको। अगर बचाए रखना बच्चों को, वे ही तुम्हारा भविष्य बचाने। संसार के सभी जीवित मृत बच्चों में संसार का नाम कटेगा। बच्चे रुष्ट हैं हमसे या हम रुष्ट हैं अपने विवेक से, बच्चे ये दुनिया छोड़ कर चले जा रहे हैं, इन्हें बचाओ, इन्हें बचाओ। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद जोशी।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।